नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईशान जैदी फिर से हाजिर हुआ हूँ आज एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है वह यहाँ भी आ पहुँचा। और इस कहानी को लिखा है श्री अख्तर वासिफ ने। तो आइए शुरू करते हैं अपने साहित्य के सफरनामे में और जोड़ते हैं एक और नई कहानी, वह यहाँ भी आ पहुँचा। उस छोटे से गांव के लोग उस प्रेतात्मा से बुरी तरह भयभीत थे। उन लोगों ने उसे न देखा था, ना उसका पूरा स्वरूप उनकी आंखों में था, फिर भी उसका भय उनके शरीर में कपकपी बनकर दौड़ रहा था। गांव वाले बहुत दिनों से उसके आने की खबर सुन रहे थे। वह बस्ती बस्ती, गांव गांव अपने पैरों तले रौंदता हुआ उसी ओर आ रहा था। उसके बारे में मशहूर था कि जिस जगह उसके कदमों की धमक गूंजने लगती है और जिस स्थान पर उसके भयावह कहकहे उड़ते हैं, वहां हवाओं में भी आग लग जाती है। मकानों की छत से सुर्ख शोले लपलपाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उस स्थान पर धुआं और राख के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। कुछ लोग उसके बारे में यह भी बताते हैं कि जिस जगह उसके कदम पड़ते हैं, वहां नालियों में पानी के बदले खून बहने लगता है। मकान ढह जाते हैं और वह जगह ऐसी वीरान हो जाती है कि वहां कोई लाशें उठाने वाला भी नहीं रह जाता। मतलब यह कि भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उसके बारे में हो रही थीं, अजीब अजीब किस्से सुनाए जा रहे थे और गांव वालों के हृदय में उसका भय जड़ पकड़ता जा रहा था। तभी एक दिन गांव वालों को सूचना मिली कि वह समीप की बस्तियों तक आ पहुंचा है। तब वह भय जो उनके अंदर अभी जड़ पकड़ रहा था, एक विशाल वृक्ष की तरह उठ खड़ा हुआ। बहुत मुश्किल से कुछ लोग उन बस्तियों तक जाने को तैयार हुए, लेकिन वह सब बीच रास्ते से ही लौट आए कि दूर से ही उन्होंने देखा कि उन बस्तियों पर वीरानी बरस रही है और ढेर सारे चील कौवे बस्ती के ऊपर मंडरा रहे हैं। वे लोग हाफते हाफते गांव वापस लौटे और पूरी कहानी कह सुनाई। फिर देखते ही देखते पूरा गांव भय के काले बादलों में छिप गया। अबोध बच्चों को उनकी माताओं ने सीने से चिपका लिया। बड़े बूढ़े माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं लिए अपने अपने घर जा बैठे। गलियां तीसरे पहर से ही सुनसान हो चुकी थीं। दरवाजे और खिड़कियों ने भी अपनी आंखें मूंद ली थीं। फिर धीरे धीरे सांझ का चेहरा भी अंधेरे में डूब गया और चारों ओर एक लंबी चुप्पी छा गई। तभी गांव के चुप वातावरण में एक हलचल सी हुई। दूर से कुछ कोलाहल सा उभरा, साथ ही कोई हाहा करके हंसा। सहमे हुए वृक्ष भय से थरथराने लगे। दरवाजे खिड़कियों की ओट और सख्ती से एक दूसरे पर जम गए और दीवारें कपकपाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव अपने भारी भरकम पैरों से घरों को रौंदता हुआ बेतहाशा दौड़ रहा हो। बच्चे अपनी माताओं की छाती से लिपट गए। घर के अंदर छुपे हुए लोगों के कान पर अपने कपकपाते हुए हाथ रख लिए कि बाहर थरथराती हुई हवा में प्रेतात्मा के कदमों की गूंज गश्त कर रही थी। धीरे धीरे वह रात बीती और दिन निकला। उस गांव में शायद वह पहला दिन था जब बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियां न बजी, न दूर खेतों से ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट उभरी। गांव वालों के लिए वह अजीब सी सुबह थी। जब सूरज काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका तो इक्का तुक्का घरों के द्वार खुले और दो चार लोग इधर उधर से निकले और यह देखकर उन पर दहशत सी छा गई कि गलियों में जहां तहां खून की छींटे बिखरी हैं। कई जगह लाशें पड़ी हैं और आसपास के पेड़ों पर चील कौवे बैठे उन पर झपट पड़ने को पंख तौल रहे हैं। फिर उनकी वीरान हुई आंखों ने देखा कि गांव के कई मकान जलकर राख हो चुके हैं और कई ढहकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। गांव वालों के लिए यह दिन बड़ा मनहूस था कि उस दिन गांव के बहुत सारे लोग भाग रहे थे। उनमें वो लोग थे जिनके पूर्वज जाने कितनी शताब्दियों से उस गांव में रहते आए थे, और वे सब उसी गांव की मिट्टी से उगे थे, उस गांव के जरूरी हिस्से थे। जैसे तैसे करके वह दिन बीता और गांव के बचे कुचे लोगों पर फिर रात उतरी। यह रात भी पिछली रात से कम नहीं थी। फिर वही शोर उभरा, वही चीखें, कदमों की धमक और वही भयावह कह कहे रात के पहलू से उभरते रहे, डूबते रहे, और दूसरी सुबह फिर वही दृश्य लिए खड़ी थी। गलियों में जगह जगह खून के छींटे बिखरे थे, कटे हुए शरीर के टुकड़े, जले हुए और ढहे हुए दीवारों वाले घर रात की कहानी कह रहे थे। तब गांव के बचे कुचे लोगों ने भी सामान समेटा कि अब उनके लिए यहां रुकना नामुमकिन था। उन्होंने बड़ी हसरत से अपने कच्चे खपरायल घरों को देखा, उन गलियों पर नजर डाली जहां खेलते कूदते वो जवान हुए थे, और चल पड़े अनजानी धरती की ओर अपनी जमीन से उखड़कर। गांव के लोग जब नई जगह पहुंचे तो वहां सब बदला बदला सा था। तेज चमचमाती हुई रोशनी वातावरण में तैरती फिर रही थी, लेकिन गांव वाले इस तेज रोशनी के आदि नहीं थे। कई दिनों तक वे आंखें मीचे इधर उधर डोलते फिरे, जैसे उन्हें कुछ सूझ ही न रहा हो और दिमाग पर धुंध सी छा गई हो। फिर वे लोग इधर उधर बसने लगे। सड़क के किनारे खाली स्थानों पर झोपड़ियां डाली गईं, उनमें चाय और कुछ खाने पीने की चीजें बिकने लगीं। नुक्कड़ों पर कार्यालयों के समीप और सिनेमा घरों के आसपास गुमटियां लगाई गईं, जिनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपने मजबूत शरीर के, उन्होंने रिक्शे या ठेले संभाले। कम उम्र के लड़के चायखानों और छोटे मोटे होटलों में मुलाजिम हो गए। औरतें इधर उधर घरों में काम धंधा करने लगीं। कुछ एक हवस के हत्थे भी चढ़ गईं और दलदलों में जाग धसीं। बूढ़े और कमजोर लोग, जिनका कोई नहीं था और इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था, कि वे हाथ में कटोरा लेकर इधर उधर भटकते फिरे। धीरे धीरे वे सब उस जिंदगी के आदि होने लगे। वे इधर उधर फुटपाथों पर कच्ची पक्की झोपड़ियों में सोते और सुबह होते ही अपने अपने धंधे में लग जाते। लेकिन दिक्कत यह थी कि और गांवों से भी लोग अब तक भागे चले आ रहे थे, और वहां की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही थी। फुटपाथें सिमटती जा रही थीं, झोपड़ियां छोटी और छोटी होती जा रही थीं। इलाका दिन पर दिन फैल रहा था, लेकिन जैसे वह फैलता जमीन सिकुड़ती जा रही थी। उसकी काली सड़कों पर भूखे बदहाल लोगों का हर रोज इजाफा हो रहा था। तब ऐसा हुआ कि एक रात जब वे सब फुटपाथों पर, झोपड़ियों में, इधर उधर खाली चबूतरों पर और मैदानों में सोए पड़े थे, कि अचानक रात के सन्नाटे में एक और हलचल सी हुई। दूर सड़क पर एक कोलाहल उभरा, कुछ चीखें जागी और दूर कोई भयावह अंदाज में हा 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 कर हंसा, साथ ही किसी दानव के भारी भरकम पैरों की धमक गूंजने लगी। वे सब हड़बड़ाकर जागे, लेकिन वह भयावह हंसी की आवाज सुनते ही उन सबके होश उड़ गए कि वहीं कदमों की धमक उनके कानों से टकरा रही थी, उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी, और वे सब अंदर ही अंदर लरसते हुए सोच रहे थे, अब क्या करें, इस मुल्क के किस हिस्से में जाएं। तो दोस्तों, आज आपने सुनी एक नई कहानी, वह यहां भी आ पहुंचा। इस कहानी को लिखा था श्री अख्तर वासिफ ने। उम्मीद करता हूं आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं साहित्य के खजाने से नई नई कहानियां लेकर के आऊं और आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव, अपने वॉइस मैसेजेस मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं उस पर और काम कर सकूं और आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त ईशान जैदी आपसे अलविदा कहता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।